हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रागिनी को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर अक्षत तुरंत ही उसे कंधे से पकड़कर वहीं बैठक पर बैठा हुआ बोला, रागिनी रुक जाओ थोड़ा और बैठो यहाँ, पहले आराम से सोच लो। और क्या शादी एंगेजमेंट लगा रखा है, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, अक्षत ने जैसे अपना फैसला सुनाते हुए कहा। अक्षत की इस बात पर रागिनी एकदम बेचारी सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना अक्षत? और इतना बोलते हुए उसने अपने पेट पर एक हाथ रखते हुए कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पापा शायद तुमसे प्यार नहीं करते और इसीलिए वे तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम नाराज मत होना, मम्मा है तुम्हारे पास। इतना बोलते हुए वो अपने नकली आंसू भी बहाने लगी। लेकिन अक्षत को साफ समझ आ रहा था कि रागिनी पूरी तरह से नाटक करते हुए ये सब कुछ बोल रही है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। लेकिन किसी तरह वो अपनी इरिटेशन कंट्रोल करते हुए बोला, स्टॉप इट रागिनी, क्या ड्रामा कर रही हो? 3 महीने में बेबी के कोई भी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, तो क्या उससे बात करने का ये नाटक? और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? मैं बस थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ। तुम्हें पता है ना, अभी मेरी एक मूवी रिलीज होने वाली है, और अगर ऐसे में लोगों को पता चल जाएगा इस सब के बारे में, तो उसका असर मूवी की परफॉर्मेंस पर होगा, और मुझ पर पहले ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर का इतना प्रेशर है, तो मुझे क्यों नहीं समझती? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? इस बार अक्षत ने लगभग चिल्लाते हुए तेज आवाज में ये सारी बातें कहीं, तो रागिनी एकदम चुप हो गई। वो भी नहीं चाहती थी कि अक्षत के करियर पर इन सब चीज़ों का कोई भी असर पड़े, क्योंकि असल में वो अक्षत के नाम और पैसे की वजह से ही तो उसके पीछे पड़ी है और उसे शादी करना चाहती है। अक्षत भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समझता था, इसीलिए वो बार बार उसे इस तरह की ही बातें बोलता था। तो रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, कभी कभी तो मैं भी बस बहुत परेशान हो जाती हूं, और तुम्हें तो पता है ना प्रेगनेंसी में कैसे कैसे मूड स्विंग होते हैं, तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे ना अक्षत? रागिनी की बात सुनकर अक्षत ने एक हाथ अपने सिर पर रख लिया और वो सिर हिलाते हुए नीचे की तरफ देखते हुए बोला, क्या करूं मैं, तुम परेशान हो तो मैं भी तो परेशान हूं ना, और सच तो यही है ना कि ये सब हम दोनों ने ही प्लान नहीं किया था और अब अचानक सब हो गया है, लेकिन इसकी वजह से हम दोनों ही अपना अपना करियर और बाकी की लाइफ तो दांव पर नहीं लगा सकते ना, वो सब भी इम्पॉर्टेंट है ना हमारे लिए, और तुम समझती हो ना? अक्षत ने इस बार बड़े ही प्यार से रागिनी को समझाने की कोशिश की, तो रागिनी ने भी एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया, जबकि सच तो ये है कि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने नाटक कर रहे थे और रागिनी अक्षत के सामने बस अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी। लेकिन मन ही मन वो नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ छुपा हुआ रहे, वो बस किसी भी तरह अपना नाम अक्षत के साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी मूवी करियर पर कोई इफेक्ट हो, इसलिए वो बस अभी फिलहाल के लिए चुप हो गई थी। अक्षत के पास बैठी हुई रागिनी ने थोड़ा सा उसकी तरफ खिसकते हुए अक्षत के और ज्यादा करीब आने की कोशिश की, तो अक्षत एकदम ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अक्षत के ऐसे रिएक्शन और एकदम अचानक से उठकर खड़े हो जाने की वजह से रागिनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें मुझसे? रागिनी के इस सवाल पर अक्षत बात संभालते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझे अभी याद आया कि मुझे वापस जाना है, वहाँ लास्ट सीन शूट होना बाकी था, मैं 2 घंटे के ब्रेक में यहाँ पर आया था और अभी 2 घंटे होने वाले हैं ना। इस पर रागिनी ने कहा, अभी तो तुम्हें यहाँ आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और तुम जाने की बात कर रहे हो, थोड़ा टाइम तो तुम्हें मेरे साथ भी स्पेंड करना चाहिए ना अक्षत, ताकि हमारे होने वाले बच्चे के मम्मी और पापा दोनों एक साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करें। बाकी सारी चीज़ों की वजह से तुम वैसे भी मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते और हम दोनों को हमेशा ही किसी ऐसी जगह पर चुपके से मिलना पड़ता है, और तुम्हें पता है मैं और तुम्हारा बेबी, हम दोनों तुम्हें कितना मिस करते हैं। अक्षत फिलहाल ये सब समझ नहीं पा रहा था कि क्यों रागिनी उसे वहाँ अपने साथ रोकने और ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अक्षत किसी भी कीमत पर वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उसे वहाँ पर काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसने उसमें कुछ देखा और फिर बोला, अरे ये देखो, मैसेज भी आया है असिस्टेंट का, वहाँ सेट पर सब मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे हैं, और लास्ट सीन बचा है यार, शूट कम्प्लीट तो करना ही होगा ना, और अभी जाने दो मुझे, मैं फिर आऊँगा पक्का नेक्स्ट टाइम और हम ज़्यादा टाइम साथ बिताएंगे, जब तक अपना ख्याल रखना, अक्षत ने मुस्कुराकर रागिनी से कहा। और उसकी इस बात पर रागिनी ने भी ज़बरदस्ती मुस्कुराया और अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली, क्योंकि उसके इतना नाटक करने और रोकने की कोशिश करने पर भी अक्षत वहाँ पर उसके साथ नहीं रुका और वहाँ से चला गया। उसके बाहर निकलते ही रागिनी अपने दांत पीसते हुए बोली, शिट, बहुत चालाक है ये अक्षत कपूर, इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते हुए रागिनी ने आगे आकर दरवाज़ा बंद किया, और जैसे ही उसने वो दरवाज़ा बंद किया और पीछे मुड़ी, तो वैसे ही साइड से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रागिनी मुस्कुराकर उसकी तरफ घूमते हुए बोली, तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते थे क्या, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी बाहर आने की, वो वापस आ गया तो? रागिनी ने अपने साइड में देखते हुए कहा।
वहां पर एक आदमी कुटिलता से मुस्कुराता हुआ खड़ा है और रागिनी की तरफ देख रहा है, और उसने ही रागिनी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने एकदम करीब खींचकर पकड़ा हुआ है। वो आदमी हंसते हुए जवाब देते हुए बोला, नहीं आएगा वो वापस, मैंने तुम लोगों की पूरी बात सुनी, इस तरह से तो भागा है वो जैसे कि तुम उसे जबरदस्ती पकड़ रही हो। रागिनी ने सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, वो मैं उसे यहाँ पर रोकना चाहती थी, हमें अभी इसकी जरूरत। उसकी बात काटते हुए वो आदमी बीच में बोल पड़ा, अरे लेकिन इसके लिए उसकी क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इतना बोलते हुए वो आदमी रागिनी को किस करने लगा, और रागिनी भी उस किस में पूरा उसका साथ दे रही है, और वो आदमी जो कोई भी है रागिनी के बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहा है, और शायद उसे इन सब के बारे में सब कुछ पता है। दूसरी तरफ अक्षत वहां रागिनी के उस रूम से निकलकर पार्किंग एरिया वापस आया, तो अजय पहले से ही कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था, क्योंकि सच बात तो ये है कि उसका कोई भी लास्ट सीन शूट होना नहीं बचा था। वो रागिनी से झूठ बोलकर और बहाना करके वहां से वापस आया था, और कार में आकर बैठते ही अक्षत ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं मैं, और वो रागिनी पता नहीं क्यों रोकना चाहती थी मुझे वहां पर। इस पर अजय ने कहा, हाँ सर मैं भी काफी टाइम से आपका वेट कर रहा था, इस बार काफी ज्यादा देर लग गई, और कुछ पता चला क्या? अक्षत थोड़ा सा सोचते हुए कहा, पता तो नहीं चला है, लेकिन मुझे शक है कि वो रागिनी झूठ बोल रही है, वो मेरे तो क्या किसी और से भी प्रेग्नेंट नहीं है। इस पर अजय ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा, ऐसा शक किस वजह से हुआ आपको सर, आई मीन कोई स्पेसिफिक रीजन?
इस पर अक्षत ने उस रिसॉर्ट के कमरे के बारे में सोचते हुए कहा, क्योंकि उसने हाई हील पहनी हुई थी, इसके अलावा वहां पर ड्रिंक भी रखी हुई थी, इसका मतलब वो अभी भी पहले की तरह लाइफ जी रही है, और अगर प्रेग्नेंट हो तो उसकी लाइफस्टाइल बॉडी में कुछ तो चेंजेस होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षत की बात सुनकर अजय ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ओके सर मैं पता लगाता हूँ, आप बस ये बताइए कि क्या उस रागिनी ने आपको रिपोर्ट दिखाई और कौन से हॉस्पिटल का नाम मेंशन था। अजय के इस सवाल से अक्षत थोड़ा सा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे याद नहीं था जब रागिनी ने उसे रिपोर्ट दिखाई थी तो उसने बहुत ही लापरवाही से देखी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा सदमे में था और इस बात को एक्सेप्ट करने में उसे टाइम लगा था, इसलिए वो उसी तरह सोचते हुए बोला, पता नहीं अजय मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था इस बारे में, और तब हमारी ज्यादा बात भी नहीं होती थी। अक्षत की प्रॉब्लम सुनकर अजय ने सजेशन देते हुए कहा, सर ऐसे तो फिर हम पता नहीं लगा पाएंगे, अच्छा एक काम करिए आप उसे बोलिए कि आप अपने जानने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एक बार उसका चेकअप कराना चाहते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि वो और बेबी दोनों ठीक है या नहीं, और ये बात बोलते वक्त आप नोटिस करना कि उसका क्या रिएक्शन है, अगर वो मान जाती है तो भी हमें सब पता चल जाएगा, और नहीं मानती है बहाना करेगी तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा शक सही है। अजय ने काफी समझदारी से ये सारी बातें कहीं तो उसका ही आइडिया अक्षत को भी बहुत पसंद आया, और उसने कहा, हाँ ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, खैर कोई बात नहीं, अच्छा आइडिया दिया है तुमने, लेकिन अब मैं कुछ दिनों में ही इस बारे में बात करूंगा रागिनी से, लेकिन अभी पहले घर चलो मुझे नैना से मिलना है, काफी टाइम से हमारी बात नहीं हुई। अक्षत की बात सुनते ही अजय ने कार स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन दोनों के साथ वहां पर कोई भी ड्राइवर नहीं है, अजय ही इस पूरे प्लान में अक्षत के साथ है, इसलिए फिलहाल उसका ड्राइवर के साथ साथ। इस मामले में अक्षत नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों को पता चले। कुछ घंटों बाद अनय और मनस्वी वही होटल रूम में ही लंच करने के बाद वहां से रेडी होकर निकले, और अनय के कहने पर ही मनस्वी उसे अपने साथ वहां पर ले जा रही है जहां पर उसने विराज को छिपाया हुआ है। मनस्वी की गाड़ी वहां होटल के पार्किंग एरिया में ही खड़ी हुई है, और अनय तो वहां पर टैक्सी से आया था, इसलिए वो मनस्वी के साथ उसकी कार में ही बैठ गया, और वो ड्राइवर भी वहां पर मौजूद था, लेकिन मनस्वी ने ड्राइवर को साथ चलने के लिए मना कर दिया और खुद ही कार ड्राइव करने लगी, क्योंकि अनय को रास्ता नहीं पता था कि वो कहां पर जा रहे हैं, इसलिए उसने भी खुद ड्राइव करने के लिए नहीं बोला और चुपचाप आकर उसके साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते में वे दोनों एकदम चुपचाप थे, उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उन दोनों के मन में ही अलग अलग बातें चल रही थीं। क्रमशः